भगवान को सभी ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान के बारे में वर्णन है। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 11। अध्याय का शीर्षक है विराट रूप और श्लोक संख्या है 3। एवं एतद् यथा आत्थ त्वं आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम एवं एतद् यथातत्त्वम् एवं एतद् यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपां ऐश्वरं पुरुषोत्तमा एवं एतद् यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपां ऐश्वरं पुरुषोत्तमा एवं एतद् यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपां ऐश्वरं पुरुषोत्तमा। बोलिए। एवं एतद् यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर ऐश्वरं पुरुषोत्तम एवं एतद् यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपां ईश्वरं पुरुषोत्तम एवं एतद् यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं ईश्वरं पुरुषोत्तम एवं एतद् यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं ऐश्वरं पुरुषोत्तम। बोलेंगे बोलेंगे। एवमेतद् यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं ऐश्वरं पुरुषोत्तम। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। एवं इस प्रकार एतत् यह यथा जिस प्रकार आत्थ कहा है त्वम आपने आत्मानं अपने आप को परमेश्वरा हे परमेश्वर दृष्टुम देखने के लिए इच्छामि इच्छा करता हूँ ते आपका रूपम रूप ऐश्वरम देवी पुरुषोत्तमा हे पुरुषों में उत्तम। अनुवाद। हे पुरुषोत्तम हे परमेश्वर यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपया दोहराइए। हे पुरुषोत्तम हे परमेश्वर यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तात्पर्य, भगवान ने यह कहा है कि उन्होंने अपने साक्षात रूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को स्त्री पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। अर्जुन यह भी जानते हैं कि कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। ओम ज्ञान्ति मिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतां परिजनसहितां कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरतिशे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अध्याय 11 है, इसका शीर्षक है विराट रूप। तो जैसे आपको पता है कि भगवद गीता के शुरू के 6 अध्याय और अंत के 6 अध्याय जो हैं, एक तरह से कर्मयोग ज्ञान योग के बारे में भगवान ने उसमें ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, और जो मुख्य वस्तु है भक्ति, उसको भगवान ने बीच के 6 अध्यायों में बताया है अर्जुन को। जिस तरह से कोई कीमती चीज़ को हम सुरक्षा में लेकर चलते हैं, तो उसी तरह से भगवान ने ये 6 अध्याय भगवद गीता के 7 से लेकर 12 इन्हें कवर किया है। जैसे कोई मुख्य व्यक्ति आता है, भारत का प्रधानमंत्री आता है, कोई मिनिस्टर आता है, तो उसके आगे गाड़ियां रहती हैं, पीछे गाड़ियां रहती हैं, बीच में उसके गाड़ी रहती है। तो उसी तरह से ये 6 अध्याय महत्वपूर्ण हैं, और इनमें भी जो बीच का अध्याय है 9 नवम अध्याय जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए नवम अध्याय की शुरुआत में भगवान बोलते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राजविद्या है, सभी विद्याओं का राजा है, सबसे बड़ी विद्या। तो भौतिक जगत में हम देखें सबसे बड़ी विद्या क्या है, कोई बीटेक करता है, फिर एमटेक करता है, फिर पीएचडी करता है, तो सबसे बड़ी विद्या ये सब है। लेकिन भगवान बोलते हैं राजविद्या, सबसे बड़ी विद्या ये नहीं है, सबसे बड़ी विद्या है भगवान के बारे में जानना, और भगवान से हमारा संबंध क्या है, और फिर उस संबंध के अनुसार भक्ति में लगना, ये सबसे बड़ी विद्या है कि हम जीवेरे स्वरूप आए कृष्णेरे नित्यदास, कि हम सब जो हैं जीवात्मा हैं और यहाँ पर संसार में माया के प्रभाव से आकर सोचते हैं कि अलग अलग उपाधि हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्बलम, अपनी अलग अलग उपाधियाँ हम मना लेते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पुरुष है, स्त्री है, और पिता है, तो इस तरह से अलग अलग उपाधियाँ मना लेते हैं, लेकिन वास्तविक हम सब जीवात्माएं हैं और जीवात्मा का जो संबंध है भगवान के साथ उसी को भक्ति कहते हैं, और उस संबंध के जो कार्य करते हैं भक्ति योग कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने श्री चैतन्य चरितामृत में जब उसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसमें चैतन्य चरितामृत का अर्थ लिखा है बहुत सुंदर, कि चैतन्य जो है जैसे आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंद, तो हमेशा चैतन्य रहता है, एक्टिव रहता है, आत्मा कभी भी मरता नहीं है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयो, है ना, आत्मा जो है शाश्वत है, चैतन्य है, हमेशा कार्यशील रहता है, कुछ ना कुछ उसको एंगेजमेंट रहता है, तो चैतन्य है हमेशा, चैतन्य चरित, चरित मतलब उसका कैरेक्टर, उसका व्यवहार कैसा है, और अमृत, तो अमृत शब्द महत्वपूर्ण है, अमृत मतलब उसमें इंग्लिश में प्रभुपाद लिखते हैं इमॉर्टलिटी, अमरता, ऐसे जीव का स्वभाव, तो श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की, गौर निताई भगवान की, सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय। तो चैतन्य चरितामृत का मतलब क्या हुआ कि जीव का स्वभाव, जीव का अमरता में स्वभाव, जो जीव का जो शाश्वत स्वभाव है, जो मरने के बाद भी वो स्वभाव उसमें रहता है, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नाश नहीं होता है, इसी तरह से यह जीवात्मा का जो स्वभाव है उसका भी कभी नाश नहीं होता है, तो उसी चरित्र को चैतन्य चरितामृत कहते हैं, और उसी को भक्ति योग कहते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना, उस पर कार्य करना। तो आप पूछेंगे कि भक्ति करने से हमें क्या लाभ है, तो भक्ति करने का लाभ तो यह है कि जीवन में हम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु वेदेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जीवात्मा जो होती है वो परम शांति को प्राप्त करती है, आगे यदि हम शांत नहीं रहेंगे जीवन में तो सुख का अनुभव कैसे हो सकता है, अशांतस्य कुतो सुखम। तो यही जो विद्या है इसी को भगवान राज विद्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसी में जीव का जो है परम कल्याण है। और कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम संसार में किसी का सेवा करते हैं, किसी का जैसे बहुत से लोग बहुत सारी आजकल उपयोग करते हैं भक्ति का, कोई परिवार का भक्त है, कोई देश का भक्त है, कोई अपने कम्युनिटी का भक्त है, समाज का भक्त है, सो वही भक्त बनते हैं, लेकिन उसमें उनको परम शांति की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा नहीं लगता कि बस अभी मैंने जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, कि अभी मुझे और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, जीवन में संपूर्णता आ गई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप देशभक्ति करें, समाज की भक्ति करें, परिवार की भक्ति करें, कुटुंब की भक्ति करें, तो उससे ऐसा फीलिंग आना संभव नहीं है। तो ऐसा भाव आ सकता है, संतुष्ट हो सकते हैं, शांत हो सकता है मन, तभी हो सकता है जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, तो व्यक्ति शांत हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, अनेक चित्त विभ्रांता मोह माया समावृता, नहीं तो उसके चित्त में हमेशा अनेक चित्त विभ्रांता, उसमें हमेशा भ्रांतियां चलती रहेंगी, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये करने से सुखी हो जाऊंगा, ये करने से सुखी हो जाऊंगा, तो इस तरह से चिंता चलती रहती है। लेकिन भक्त जो है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त जो है निष्काम हो जाता है, मतलब उसे संसार में कुछ मिले या ना मिले वो शांति रहता है। जो भी भगवान की और अपने कर्मों के हिसाब से जो मिल जाता है उसी में वो सुखी रहता है, और अपना जो समय उपयोग है किसके लिए करता है, भगवान की भजन भक्ति के लिए। क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ मनुष्य जन्म लभी या संसार है। तो दुर्लभ मनुष्य जन्म लेकर यदि हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो क्या होगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है बहु दुस्तारे कृपया पाहे पारिमरार। तो संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मृत्यु होना पड़ेगा, और जन्म मृत्यु के बीच में क्या है, दुख है, आदि दैविक आदि आत्मिक और आदि भौतिक। अपने शरीर के द्वारा दुख है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा दुख है, दूसरे जीवों के द्वारा दुख है, और प्राकृतिक दुख है, सर्दी गर्मी बरसात। अभी देखें बरसात बॉम्बे में कितना परेशानी हो रहा है बरसात से, तो आधा भारत बारिश से परेशान है, आधा भारत सूखे से परेशान है। तो ये परेशानी है, किसी के शरीर में रोग हो गया है परेशानी है, किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ कष्ट दे दिया, आपका प्रॉपर्टी छीन लिया, पैसा छीन लिया, आपको धोखा दे दिया, चीटिंग किया, तो ये कष्ट है। तो जन्म मृत्यु तो कष्ट है, उसके साथ साथ ये सब सारे भी कष्ट चलते रहते हैं। तो व्यक्ति भक्ति करने से ये सब कष्टों से तो मुक्त हो ही जाएगा, और परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम वस्तु प्राप्त होगी। तो ऐसा उसे आनंद प्राप्त होगा कि वो इस संसार की जो चीज है, संसार का जो सुख है, उसे तुच्छ लगने लगेगा। तो इसी के बारे में भगवान नवम अध्याय में बोलते हैं, और फिर उसके बाद 11वें अध्याय में 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य क्या क्या हैं। वैसे तो भगवान बोलते हैं शुरू में कि अर्जुन मेरे अनंत ऐश्वर्य हैं, बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन मैं कुछ मुख्य ऐश्वर्य ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। तो किसी को पता है कितने कितने ऐश्वर्य, ऑपुलेंस के बारे में भगवान ने चर्चा किया है भगवद गीता के 10वें अध्याय में, किसी ने गिना है? जैसे भगवान बोलते हैं बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि बलम बलवताम चाहम, तो ऐसे ये सब भगवान के क्या कहे गए हैं, ऐश्वर्य कहे गए हैं। तो ऐसे कितने सारे ऐश्वर्य भगवान के भगवत इस अध्याय में बताए गए हैं, किसी को याद है? 72 और थोड़ा सा कम बोला, 82, तो गिन भी सकते हैं। तो 82 या 84 है, आप गिनेंगे। तो ये कुछ ही ऐश्वर्य भगवान ने बोले हैं, और दशम अध्याय के अंत में अर्जुन भगवान बोलते हैं दशम अध्याय के अंत में अपने ऐश्वर्यों का डिस्क्रिप्शन देने के बाद, अथवा बहु नेतेना किम ज्ञातेना तवार्जुना विष्टभ्यम इह इदम कृष्णम एकम शेन स्थितो जगत। मतलब क्या है, हे अर्जुन इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? भगवान बोलते हैं कि अर्जुन इस सब सारे ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मेरे इतना सारा ऐश्वर्य तुम्हें मैं बता रहा हूं लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान बोलते हैं आगे, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूं, एक अंश मात्र, एक फ्रैगमेंट। जैसे अग्नि जल रही है किधर, बहुत लपटें निकल रही है अग्नि की, और उस अग्नि की लपटों में से एक चिंगारी बाहर निकल के गिर जाए तो उसे फ्रैगमेंट कहते हैं, एक चिंगारी है, अंश है। तो भगवान बोलते हैं मेरा इतना सा एक अंश, चिंगारी जैसा अंश ही काफी है पूरे भौतिक सृष्टि को संभालने के लिए, इसको चलाने के लिए। जैसे हम पढ़ रहे थे वैष्णव भजन में, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है मते सृजन संहार। मतलब भगवान इच्छा करने से क्या हो जाता है, सृष्टि हो जाता है। जैसे बाइबल में आता है कि जीसस क्राइस्ट बोलते हैं लेट देयर बी क्रिएशन, भगवान बोलते हैं लेट देयर बी क्रिएशन एंड क्रिएशन टेक्स प्लेस। भगवान सोचते हैं कि सृष्टि हो जाए और सृष्टि हो जाती है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश के माध्यम से सब प्रकट हो जाता है, पहाड़, नदियां, पृथ्वी, सब प्रकट हो जाता है। तो ये एक अंश के से ही संभव है। भगवान बोलते हैं मेरे एक अंश के माध्यम से ही सब कुछ चलता है। भगवान डायरेक्टली यहां पर आकर देखते नहीं है। जैसे हमारे देश में अभी मुख्य कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, मुख्य प्रधानमंत्री है। तो आपके घर में अगर बिजली कट गई तो प्रधानमंत्री आके नहीं ठीक करेगा आपका बिजली का वायर। अगर आपके घर में बिजली कट गई तो क्या बोलेंगे? कंप्लेंट करेंगे बिजली विभाग में, फोन करेंगे कि हमारे घर है। तो वो बिजली विभाग का जो ऑफिसर है वो भी नहीं आएगा, वो भी किसी इलेक्ट्रीशियन को भेजेगा कि कंप्लेंट है और आकर ठीक कर दो। तो इस तरह से भगवान सृष्टि कर देते हैं, लेकिन सृष्टि चलाने के लिए डायरेक्टली यहां पर आकर नहीं देखते। उन्होंने क्या किया है? अपॉइंट किए हैं बहुत सारे, उनके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। जैसे हम बोल सकते हैं संसारिक भाषा में, कोई बड़ा व्यक्ति है, कंपनी चलाने वाला है, तो बहुत सारे अपने मैनेजर रखता है अलग अलग शहर में। तो भगवान ने ऐसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे देवताओं को नियुक्त किया है ना। जैसे वर्षा के लिए कौन से देवता जिम्मेदार हैं? इंद्र देवता, उनका डिपार्टमेंट है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। और अग्नि के लिए अग्नि मिलता रहे, प्रकाश मिलता रहे, सूर्य देवता। और पानी के लिए जल देवता हैं, वायु के लिए वायु देवता हैं। तो ये सब व्यवस्थित चलता रहे सृष्टि में, सबको वस्तुएं प्राप्त होती रहे अपने जीवन के लिए, ये सब देवताओं के माध्यम से होता है। लेकिन किसके अध्यक्षता में? मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, कि जो चर और अचर वस्तु है उसको, उसके अस्तित्व का जिम्मेदारी कौन लेते हैं? प्रकृति है। और प्रकृति किसके अंडर काम करती है? भगवान के अंडर कार्य करती है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि एक अंश से ही, ये तो इच्छा करने से ही सृष्टि हो जाता है। क्योंकि भगवान महाविष्णु जो हैं, कहां पर हैं? वो कारण सागर में हैं। ये जो ब्रह्मांड है हमारा, ऐसे 14 लोक हैं, ये है पृथ्वी लोक, उसके ऊपर 6 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं, टोटल 14 लोक हैं। तो ऐसे 14 लोक हैं, ये मिलाकर एक ब्रह्मांड बनता है। तो जो महाविष्णु हैं, उनके शरीर से अनंत कोटि ऐसे ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। जब महाविष्णु श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो ये सब ब्रह्मांड उनके शरीर से बाहर निकलते हैं। और जब सांस वापस लेते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में वापस समा जाते हैं। और इसी बीच में हम अलग अलग योनि में भ्रमण करते हैं। भगवान की एक श्वास के जो समय है, एक श्वास लेने का जो समय है, लेने का और छोड़ने का, उस समय में हम लोग अपना संसार करते हैं, अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, भोग करते हैं, दुख झेलते हैं, सुख झेलते हैं, हानि होता है, लाभ होता है, मान अपमान होता है, सुख दुख होता है, और कभी नरके डुबाए, कभी स्वर्गे उठाए, कभू राजा कभू प्रजा। तो इस तरह से अलग अलग योनियों में भ्रमण करते हुए सुख दुख का भोग करते हैं। लेकिन यह समय जो है बहुत ही छोटा है, भगवान के सामने ये जो है उनकी श्वास लेने और छोड़ने के बराबर है। तो समझ सकते हैं भगवान कितने विशाल हैं। इसलिए भगवान को विभू कहा गया है। हम हैं अणु आत्मा और भगवान है विभू आत्मा। हम हैं आत्मा, भगवान है परमात्मा। तो एक अंश के माध्यम से ही ये सृष्टि को भगवान संभाल सकते हैं। तो अर्जुन यहां पर आज का जो श्लोक है, इसमें यही साबित करना चाहते हैं, यही स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान ने बोला है कि मेरे एक अंश से पूरी सृष्टि चलती है। तो अर्जुन चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर बोले कि, जैसे अभी हम देखते भी हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे ढोंगी लोग हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं, है ना, भगवान कृष्ण का अवतार हैं, कलयुग में कल्कि का अवतार हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से रक्षा करने के लिए अर्जुन पहले ही पूछ लेते हैं कि भगवान भविष्य में ऐसे लोग आएंगे जो जो बोलेंगे कि मैं भगवान हूं, तो ऐसे लोगों को चुप करने के लिए क्या है, स्थापित करना चाहते हैं कि जो भगवान हैं उनके पास ऐश्वर्य होते हैं और भगवान जो है अपना विराट रूप प्रकट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने बोला है मेरे एक अंश से सृष्टि का पालन होता है, संहार होता है, सिर्फ बोला नहीं है, भगवान ने यहाँ पर साबित भी किया है। क्यों इस अर्जुन इसीलिए पूछ रहे हैं कि भगवान अपना विराट रूप दिखाइए, जिसमें भगवान का विराट रूप वास्तव में क्या है। तो विराट रूप जो है भौतिक जो हम देखते हैं संसार की चीजें, उसमें भगवान कहाँ कहाँ पर हैं वो है वास्तव में। जैसे विराट रूप में कहा गया है कि जितना जितने पहाड़ हैं पृथ्वी पर, वो सब पहाड़ जो हैं भगवान की हड्डियों के समान हैं। और जो बादल देखते हैं हम, आकाश देखते हैं, वो भगवान के बालों के समान हैं। और जितने पेड़ पौधे देखते हैं भगवान के शरीर पर बालों के समान हैं। और इस तरह से समुद्र जो हैं वो भगवान के उदर के समान हैं, जैसे हमारे शरीर से ही पसीना निकलता है, लेकिन भगवान के शरीर से यदि पसीना निकलता है तो समुद्र बन जाता है। तो ये भगवान का विराट रूप है। तो ये भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया और दिखाया कि भगवान कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं। तो अर्जुन यही स्थापित करना चाहते थे, जैसे श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में बता रहे हैं, अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहते थे, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे, अतः लोगों को सावधान रहना होगा। तो हम जैसे लोगों को सावधान करने के लिए कि हम फंस नहीं जाएं, आजकल बहुत सारे लोग ढोंगी लोग हैं, तो उनसे बचाने के लिए अर्जुन यहाँ पर ये प्रश्न पूछते हैं भगवान से। क्योंकि कलयुग में जो है जीव शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, कलयुग में जो है कलौ शूद्र संभवा बताया गया है, कलयुग में संभवा मतलब समान होंगे, किसके समान होंगे, शूद्र के समान। तो शूद्रों का क्या स्वभाव होता है, शूद्रों का स्वभाव होता है जैसे हर वर्ण के और हर आश्रम के लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण समाज जो है ये जाति के आधार पर नहीं है कि जन्म के आधार पर मैंने जन्म लिया है, ब्राह्मण पिता से जन्म लिया है तो मैं भी ब्राह्मण हो गया, नहीं। ये जो है अपने वर्ण और स्वभाव के आधार पर है। जैसे किसी का स्वभाव है ब्राह्मण का तो वो ब्राह्मण माना जाएगा, भले ही वो क्षत्रिय या वैश्य परिवार में हो। यदि कोई शूद्र है लेकिन उसका स्वभाव क्षत्रिय जैसा है तो वो क्षत्रिय माना जाएगा। तो कलयुग में सिर्फ इसलिए कहा गया शूद्र। तो शूद्र जो है अपने अपने आप अपने कल्याण के बारे में नहीं सोच सकता है। जैसे पशु होता है या कोई छोटा बच्चा होता है, उसे हमेशा गाइडेंस की जरूरत होती है, संरक्षण की जरूरत होती है। वो अपने आप अपना भला और अपना बुरा नहीं सोच सकता है कि मेरे लिए क्या वस्तु सही है क्या वस्तु गलत है। छोटे बच्चे को देखा है, अगर नहीं संभालेंगे तो थोड़ी देर में अपना ही नुकसान कर लेते हैं, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे, उनके घर में एक छोटा बच्चा था तो पंखे में बार बार वो आकर ऐसे उंगली को लगाता था, तो प्रभुपाद ने मना किया मत करो। एक बार मना किया फिर भी जाके उंगली लगाता था, दूसरी बार मना किया फिर भी जाके लगाता था, तीसरी बार मना किया फिर भी लगाता था, तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है अभी मैं नहीं बोलूंगा। तो चौथी बार गया और जब पंखे में उंगली डाला ऐसे अंदर, तो उंगली में पंखे का जो पंखुड़ी है वो लग गया, तो उसको दर्द हुआ, तो फिर तुरंत उंगली हटाया वहां से। तो फिर वो समझ गया कि ये गलत है। तो कलयुग में हम सब ऐसे ही हैं कि अच्छे जो उपदेश हैं वो आसानी से समझ में नहीं आते, और हमें पता नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो कलयुग में प्राय लोग का स्वभाव है गलती करने का, अगर वो सही रूप से किसी के गाइडेंस में अगर नहीं है तो प्राय स्वभाव रहता है गलती करने का। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पर हमें सावधान करते हैं कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए, और उसके लिए प्रमाणिक ग्रंथों का शरण लेना चाहिए। प्रमाणिक ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, ये भगवद्वाणी है, भगवान के मुख से आई है। गीता सुधीता कर्तव्यम, तो भगवान कृष्ण के द्वारा जो भगवद गीता है उसमें भगवान ने अपने बारे में कि भगवान के क्या लक्षण होते हैं, भगवान कौन है और कैसे उनके व्यवहार होता है, वो सब प्रकट किया है। और साथ ही में श्रीमद् भागवतम, तो इनके आधार पर हमें पता चलता है कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में कि ईश्वर परम कौन है, परमेश्वर कौन है, कृष्ण है, गोविंद है, ईश्वर परम कृष्णा। जैसे यहां पर भी हम देखते हैं अर्जुन बोल रहे हैं परमेश्वर और पुरुषोत्तम, परम ईश्वर, ईश्वर तो बहुत सारे हैं लेकिन परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भ्रत्य तारे यही छे नचाए सही छे करे नृत्य, कि सभी भगवान कृष्ण के दास हैं और भगवान कृष्ण एकमात्र ईश्वर हैं। एको देव देवकी पुत्र एव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम तस्मा से एकम सेवा एकम तस्मा से सेवा और मंत्र से एकस्य नामानी यानी। ये कलयुग में जीवों को क्या चाहिए? सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए, फटाफट चाहिए, समय नहीं है किसी के पास। तो हमारा जीवन जो है 100 साल का है, अभी 100 साल भी कम है, 100 साल भी नहीं जीता है कोई, तो इसीलिए हमारे पास समय भी कम है, बहुत बिजी हैं, तो इसीलिए हमें शॉर्टकट चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, और जीवन में हर चीज़ फास्ट चाहिए ना, फास्ट इंटरनेट चाहिए, फास्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, फास्ट कार चाहिए। तो भगवान ने बोला ठीक है, तो एको देवो देव की पुत्र गीता, एको देवो देव की पुत्र एव, तो केवल एक ही भगवान को मानो और 100 भगवान को 1000 भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। वो कौन है? देवकी पुत्र यशोदानंदन श्री कृष्ण। एको गीतम देवकी पुत्र गीतम, और एक ही गीत को आप गाओ। बहुत सारे गीत है संसार में लेकिन वो सारे गीत क्या होता है, थोड़े साल बाद, थोड़े दिन बाद, थोड़े साल भी नहीं लगता है, पुराने हो जाते हैं। कुछ गीत कुछ साल तक चलते हैं, पुराने जमाने के कुछ लोग पसंद करते हैं लेकिन वो भी थोड़े दिनों बाद वो भी पुराने हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा गीत गाया 5000 साल पहले भगवद गीता, जो आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा अनंत काल तक। वास्तव में भगवद गीता भगवान बोलते हैं इवम विवस्वते 12 करोड़ साल पहले सूर्य देवता को सुनाया था। तो इस तरह से कलयुग में केवल एकमात्र देव भगवान श्री कृष्ण है, एकमात्र गीत भगवद गीता है, एकमात्र सेवा तस्य देवस्य सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहिए। सेवा मतलब सेवन मुखे जीवा दो, भगवान का नाम लेना चाहिए। और एक ही मंत्र है, क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम ये करते हैं अपने जीवन में तो जीवन में हम सर्वोच्च सिद्धि भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। तो अभी प्रश्न उत्तर के लिए समय नहीं है, भगवान का दर्शन खुलने वाला है, कृपया सब खड़े हो जाइए और भगवान की शयन आरती में भाग लीजिए। दोनों हाथ ऊपर करिए, भगवान का हम स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से।